हिजरा के आदम और इब्लीस का किस्सा। हमने इंसान को सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से बनाया और इससे पहले जिन्नों को हम आग की लिपट से पैदा कर चुके थे। फिर याद करो इस मौके को जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से एक बशर पैदा कर रहा हूँ। ये है मेरा आपका तारुफ। कोई चीज़ बनी हो तो कहते हैं किस चीज़ से बनी है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। प्योर रेशम है, प्योर कॉटन है, कदर बढ़ जाती है ना। अल्लाह ने इंसान के लिए क्या कहा, सूखा गारा। इंसान की अना और बुत को तोड़ने के लिए क्या ये काफ़ी नहीं। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि इंसान सोने का भी बन सकता था, क्या मुश्किल है। पहाड़ों की तहों में इतना सोना पड़ा है, हम सब सोने के होते हैं, आंखों की जगह हीरे लगे होते हैं, कौन सजदा करता। मिट्टी का बना हुआ इंसान इतना करता है, कभी इमेजिन तो कीजिए अगर सोने चांदी के होते तो पांव जमीन पे ना रखते। ये तो अल्लाह का शुक्र है उसने दिन में कई बार गंदगी साफ करवाई हमसे हमारी। कभी अकड़ आए, कभी बड़ा बनने को दिल चाहे, कभी लोगों की नजरों में नुमाया होने को दिल चाहे, तो फौरन सोच लें कि कितनी गंदी हो। एक दिन ना नहाए बदबू आएगी, सुबह उठ के ब्रश ना करें तो अपने ही सांस से तबीयत मचलने लगे। क्या है इंसान और बनता क्या है, तो अपने बुत को तोड़ना है इंशाल्लाह। फिर कहा, जब मैं इसे पूरा बना चुकूं और इसमें अपनी रूह से कुछ फूंक दूं तो तुम सब इसके आगे सजदे में गिर जाना। चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, इसने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया। ये है अंदर की बड़ाई। जब तक सजदे का हुक्म नहीं हुआ लोगों को पता ही नहीं था कि इब्लीस की असल क्या है। इसी तरह याद रखिए, इंसान छुपा रहता है मगर इसकी असल कब खुलती है, जब उससे मामला बढ़ता है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि रा प्या जाने ते वाह प्या जाने। बहुत सारे आजिज मिजाज लोग देखने में बड़े आजिज दिखते हैं, अंदर से सख्त होते हैं, स्टबन, बिल्कुल इतने ज्यादा अपने आप को बड़ा समझने के एहसास में होते हैं। तो इबलीस को सजदे का हुक्म क्या मिला, उसकी असल खुल गई, वरना किसी को नहीं पता चलना था कि वो कैसे दिल का ना शुक्रा था। रब ने पूछा, इब्लीस तुझे क्या हुआ, तूने सजदा करने वालों का साथ क्यों ना दिया। उसने कहा, मेरा ये काम नहीं कि मैं इस बशर को सजदा करूं जिसे तूने सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से पैदा किया। एक एक जुमले से तकबर दिख रहा है और इंसान दुश्मनी दिख रही है। तो हमें भी शैतान से इतना ही बुग़्ज़ रखना चाहिए जितना उसको हमसे है। रब ने फरमाया, अच्छा तू निकल जा यहां से क्योंकि तू मरदूत है और अब रोजे जजा तक तुझ पर लानत है। इसने अर्ज किया, मेरे रब ये बात है तो फिर तू मुझे मोहलत दे जबकि सब इंसान दोबारा उठाए जाएंगे। यहाँ नोट कीजिए, वही तस्वीर याद कीजिए जरा, इस्लाम ए टू जी की। ईमान बिल आखिरा दिल में होता ना, शैतान का है कि नहीं, बिल्कुल है। क्यों कह रहे कि दोबारा उठाए जाने, शैतान को पता है बंदा मरेगा, शैतान को पता है मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा, और उसको ये भी पता है कि ये सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। तो आप और मैं अगर बहुत मुंह से दीन की बातें करें कोई बड़ी बात नहीं, मालूम से कुछ नहीं होता, अमल से बात बनती है। मालूमात की हद तक शैतान को बहुत मालूमात थी, लेकिन जब अमल का वक्त आया तो तकबर में पड़ गया। अल्लाह ताला हमें इस रवैये से बचा दे। फरमाया, अच्छा जा तुझे मोहलत है उस दिन तक जिसका वक्त हमें मालूम है। वो बोला, मेरे रब जैसा तूने मुझे बहकर, नोट करे रब्बी, अल्लाह को रब भी मानता है तो तौहीद रबूबियत का इकरार करने वाला तो इब्लीस भी है। असल बात तौहीद अलूहियत है, उसको इलाह भी मानो, उसके आगे झुको भी, उसको दुआएं कबूल करने अल्लाह भी मानता था, फिर भी उसकी निजात ना हुई तो खतरे की बात है हम सब के लिए जो सिर्फ अपने इल्म पे मान करते हैं और अमल के वक्त में पीछे होते हैं। वो बोला, मेरे रब जैसा तूने मुझे बहकाया है इसी तरह मैं जमीन में इनके लिए दिल फरेबियां पैदा करके इन सब को बहकाऊंगा। जरा सा नोट कीजिए, बदतमीज है इंतहा दर्जे का। याद रखिए, अपने लफ्जों को तोले, बोलने से पहले लिखने से पहले लफ्ज बोलते हैं। कैसे अंदर की हकीकत पता चलती है, दिन रात लोगों के साथ इंटरेक्शन है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ही के नाम पे, साथियों के मैसेज पढ़ के दिल खुश हो जाता है, मैसेज सुन के दिल खुश हो जाता है, वक्त हो ना हो दिल करता है कि फूल ही बरसेंगे। बात का अंदाज इतना मीठा और बाज मैसेज, बाज पैगाम, बाज जुमले इतने कड़वे कि कई कई दिन दिल नहीं करता उसको खोलने को। बात अब बा नसीब, इबलीस अल्लाह को कह रहा तूने बहकाया, ये कौन करता है, अपनी बड़ाई, हर बात में मैं अच्छा दूसरा बुरा, आपको ये बात नहीं समझ आई मुझे आ गई, आपकी असल सोच ये मेरी ये सोच। आप देखिए कि उस वक्त इबलीस को मौका दिया जाता, उसने साबित करके आना था स्टेज पे खड़े होकर के आदम को सजदे का हुक्म देना इंतहाई गैर मारूफ बात थी, और नौजबिला सुम्मा नौजबिला अल्लाह ने इतनी गलत बात का हुक्म दिया, ये इबलीसियत होती है। आज लोग इस्लाम के खिलाफ जब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में जाके बोलते हैं तो मुझे उस वक्त ये जुमले याद आते हैं कि वाकई इबलीस को अगर मोहलत मिलती तो कहता देखे तूने मुझे बेकार, हर बात तूने की तूने की। और ये बहुत बुरा एटीट्यूड होता है। बस लोग हमेशा अपनी गलती दूसरे पे डालेंगे और दूसरे की खूबी को अपने नाम पे डाल देंगे। और शैतान की ये बात, आप अभी से अपने बच्चों को भी कंट्रोल करें। आप देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपके बच्चे ऐसे हैं, लेकिन शैतान बच्चों के पास आता है। अक्सर बच्चे माओं को ब्लेम देते हैं, आपने नहीं किया, आपने नहीं दिया, आपने खुद ही तो ये कहा था। बोलते हैं कि नहीं, माएं नहीं सिखाती, शैतान बोलता है। शुरू से उनके लफ्ज बोला, बेटा रुकिए पहले, क्या कहा आपने, मामा ने ऐसे किया था, सीधी बात करें। यकीन करें ये शुरू से बोलने की बात ठीक हो जाए ना, बाकी चीज़ें ठीक होती हैं। और मैंने कई ऐसे खूबसूरत इंसानों को देखा है, वो कहते हैं कि बोलना ज़रूरी है, चुप रह लो, बुरी जो बात कहनी है तो उसे बेहतर खामोश हो जाओ। क्यों? क्योंकि हम शुरू से अपने बच्चों को बोलना सिखाते हैं, चुप रहना नहीं सिखाते। इबलीसियत का ये जो फ्रेब है, आज आप देखिए दुनिया में, आप कहते हैं यस आई नो दिस, इट्स माई चॉइस। यानी इसके अब कई खूबसूरत और बदसूरत एंगल आज भी दुनिया में आपको मुझे देखते हैं। मुझे तो अपने लिए फिक्र करनी है, बात करने से पहले देखें कि अल्लाह से दुआ मांगते हुए शिकवा तो नहीं कर। कुछ लोग शिकवा करेंगे, अल्लाह तूने मुझे दिया ही क्या, अल्लाह तूने मेरे से जुल्म कर दिया। अल्लाह एक पूरा लेक्चर है इस पे कि अदब, अदब है टॉपिक असल में, अदब बिल्ला, अल्लाह का अदब, फिर फरिश्तों का, फिर इंसानों का। तो उसमें मैंने पूरी कुरान से नबियों की मिसालें बयान की थी, पीछे भी आपको बताया था और आगे सूरह शोरा में उस पर जिक्र करूंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने याद दिलवाया तो, कि हजरत इब्राहिम अल्लाह से बात कैसे खूबसूरत तरीके से कर रहे थे। तो जैसे पीछे सूरह यूसुफ में पढ़ चुके हैं कि याकूब के बाकी बेटे किस टोन में बात करते थे और यूसुफ ने किस टोन से बात की। अल्लाह ताला हमें भी बेहतरीन अदब से आरास्ता कर दे। फिर आप देखिए दूसरी, इसके बाद दिल फरेबियाँ पैदा करूंगा तो क्या पता चला कि दुनिया की खूबसूरती अल्लाह की तरफ से है, पर इसमें कशिश और अट्रैक्शन इबलीस की तरफ से है। और इसको भी नोट कर लें कि मकसद हयात से रोकने वाली सबसे बड़ी चीज़ दुनिया की दिल फरेबी। अल्लाह ताला मुझे इस शहर से निकाल दे। फरमाया सुवाए तेरे इन बंदों के जिन्हें तूने इनमें से खालिस कर लिया हो, फिर यहाँ रुकना पड़ेगा। कौन शैतान के चुंगल से आज़ाद है, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। इसका फ़र्क मुखलिस और मुखलस का सूरह स्वाद में बताऊंगी, लेकिन यहाँ बस इतनी सी दुआ करते हैं कि अल्लाह इखलास दे दे। अपनी ज़ुबान में कह देती हूँ कि इखलास वो जैकेट है जिसको पहनने वाला शैतान प्रूफ हो जाता है। आप कहते हैं ना फायर प्रूफ, हीट प्रूफ, वाटर प्रूफ, इखलास वाला शख्स शैतान से बचता है। इसीलिए फिर आप देखिए कि हज़रत उमर को देख कर बोलिए शैतान रास्ता बदल लेता था। तो शैतान से खुद भी बचना है, इंशाल्लाह बच्चों को भी बचाना है, तो क्या करें, इखलास पैदा कर लें। उसको बहुत डर लगता है इससे। तेरा बस तो सिर्फ इन बहके हुए लोगों पर ही चलेगा जो तेरी पैरवी करें, और इन सब के लिए जहन्नुम की वाइद है। ये जहन्नुम जिसकी वाइद इबलीस के पैरोकारों के लिए की गई, इसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उनमें से एक मखसूस हिस्सा कर दिया गया। बखिलाफ इसके मुत्तकी लोग बागों और चश्मों में होंगे, इनसे कहा जाएगा दाखिल हो जाओ इनमें सलामती के साथ बेखौफो खतर। इनके दिलों में जो थोड़ी बहुत खोट खपट होगी इसे हम निकाल देंगे। कहाँ निकालेंगे? अब याद है सूरह अलराफ़ का सबक, बिल्कुल जन्नत के बाहर एक जगह, पुल सरात का आखिरी सिरा और जन्नत का एंट्रेंस, वहाँ कंतरा, उस जगह को कंतरा कहते हैं। अल्लाह ताला वहाँ रोक कर दिलों के सब बुग़्ज़ और कीने ख़त्म कर देगा। मियाँ बीवी की नहीं बनती, दोनों ही जन्नत में पहुँच गए, क्या बनेगा? वहाँ भी लड़ाइयाँ ही होती रहेंगी, तुम यहाँ भी आ गई नहीं। अल्लाह दिलों को साफ कर देगा। और कैसा करेगा? वो आपस में भाई भाई बनकर आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे, वहाँ इन्हें ना किसी मुशक्कत से पाला पड़ेगा और ना वो वहाँ से निकाले जाएंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको मुझे इस बात का यकीन दिला दे। इस दुनिया में मुशक्कत है, मेहनत कर लें, सब्र कर लें, वहाँ इंशाल्लाह आसानी है। और आखिर में कितना प्यारा मैसेज, नबी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, ए नबी मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत दरगुजर करने वाला और रहीम हूँ, मगर इसके साथ मेरा अजाब भी नहायत दर्दनाक है। इसकी तिलावत सुनते हैं नायतों की।
قال رب فأنظرني تعلمون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم
آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دونوں صفات درود پہ ہیں رحم بھی سب سے زیادہ اور غضب بھی ہے الایمان بین الخوف والرجاء ایمان خوف اور امید کے بیچ کا نام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف بھی دے اور اپنی جنت کی امید بھی دے اب آگے حضرت ابراہیم اور ان کے ناطے سے قوم لوط کا تذکرہ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ، جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے، انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے بھیجے ہوئے، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے، صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ہم ان سب کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، وہ تو پیچھے رہنے والوں میں ہوگی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوگی۔ یہاں دیکھیے نبی کی بیوی اور پیچھے رہ رہی، کیونکہ دل جڑا ہوا تھا پیچھے والی چیزوں سے۔ تو یہاں وہ بات نوٹ کیجئے کہ جب آپ اور میں ایک چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اور مقصد کیا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد بار بار پیچھے دنیا کی وہ چیزیں دیکھنا، وہ گناہ کی محفلیں، وہ رونقیں اور وہ سارے طور طریقے جن سے اللہ نے ہمیں نکال دیا، تو اس کو اختیار کرنا ان سے محبت کی علامت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے پچھلی زندگی کی ساری اٹریکشنز ہمارے دلوں سے نکال دیں۔ بعض دفعہ لوگ گناہ چھوڑ دیتے ہیں، غلط کام چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بعد میں ان چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، ہم یہ کرتے تھے کتنا مزہ آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ پھر جب یہ بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں، ہم تم سے سچ کہتے ہیں، ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے۔ پھر ڈسٹریکشنز ختم کی جا رہی ہیں کہ فوکس ہو کے اپنے راستوں پہ چلو، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ کیسے وہ رات گزری ہوگی کہ جب خبر مل چکی ہے کہ صبح تک ساری بستی نے تباہ ہو جانا ہے، نبیوں کو یہ تکلیفیں سہنی پڑتی تھی کیونکہ اللہ کے فیصلے بے لاک ہیں۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھائے۔ لوط علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، یعنی میرا مذاق نہ بنواؤ، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، تیری جان کی قسم ہے نبی۔ دیکھیں اللہ اپنے نبی کی جان کی قسم کھاتا ہے۔ اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے، آخر کر پو پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہے۔ کیا پتہ چلا کہ عبرت وہی لیتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ ہم نے قوم لوط کا واقعہ قدرے تفصیل سے پڑھا، اس دور میں تو ایک بستی کی یہ کہانی تھی، آج تو پوری دنیا میں یہ گندگی پھیلی جا رہی ہے اور پورے پلانز کے ساتھ اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں ہومو سیکشولیٹی ایک حق بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور جو چیزیں میرے سامنے لوگوں کی پہنچتی ہیں، اور ایک بہت ہی قریبی ساتھی نے جو اپنے گھر کے ماحول اور اس بچے کی باتوں سے، پلس ایک آرٹیکل چھپا ویسٹ میں کہ جس کے مطابق انہوں نے اب یہ پالیسیز بنانی شروع کر دی کہ پیدا ہوتے بچے کا جینڈر ختم کر دو۔ پہلے دیکھیے پنک اور بلو کے ساتھ بیٹے اور بیٹی کو الگ کیا، غبارے گلابی لگا لو تو لڑکی ہے اور بلو لگا دو تو لڑکا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں اس کو ختم کر دو۔ پیدا ہوتے ہی لوگوں سے یہ ختم کر دو کہ لڑکا لڑکی، لڑکا لڑکی نہیں، لڑکا لڑکا، لڑکا لڑکا، لڑکی لڑکی، لڑکی لڑکی، فطرت کے خلاف جا رہے ہیں۔ اور پھر کارٹونز میں یہ میسیجز دیے جا رہے ہیں، پورا انہوں نے مجھے کارٹون کا نام دیا ہوا ہے، کہیں بھی رکھا ہوا ہے، پچھلے سال شاید میں نے اس کا نام بھی کوٹ کیا تھا، کہ کس طریقے سے آج ہڈن میسیجز بچوں کو دیے جا رہے ہیں کہ لڑکا لڑکا از اوکے، पहले बाने हागे और जो ये आप कह लीजिए कि डे केयर सेंटर्स है उसमें बच्ची बच्चे को उठाते थे साथ, शुरू से पेयरिंग कराते थे कपल बनाकर, अब जान के लड़के लड़के को और लड़की लड़की को बिठा रहे हैं और हर चीज़ ये प्रमोट कर रही है। हालांकि आपने देखा कि एक कौम तबाह कर दी गई और बहरे मुर्तार जिसको आज डेड ओशन लोग कहते हैं, डेड सी कहते हैं, उसका जनूबी हिस्सा एक हौलनाक जलजले से धंसा। ये पूरी बस्ती जमीन से उठाकर ऊपर ले जाई गई और ऊपर से जाके फरिश्ते ने अपने पर के जरिए इसको नीचे फेंका और ये पूरी जोर से गिरी तो नीचे चली गई। सदोम नाम का एक शहर था, पानी में डूबे हुए शहर आज भी मिले हैं। आम कौमों को एक सजा हुई, बहुत हुआ तो दो हुई, कौमे लूत को चार सजाएं मिली थी। उल्टाए गए, इन पर पत्थरों की बारिश हुई, आग के पत्थर बरसे इन पर, जलजला आया और इसी तरह से पानी में गर्क किए गए। तो आज इसके बारे में भी हमें दुआएं मांगने की ज़रूरत है, कोशिशों की ज़रूरत है। अभी मैंने ये पैरसी के लेक्चर्स में बिल्कुल आखिरी दिन थे रमज़ान से एक दो दिन पहले, एक लेक्चर दिया था कि बच्चों की जिंसी तरबियत कैसे की जाए। तो उसमें कुछ टिप्स थी कि आप अपने बच्चों की जिंसियत को कैसे मखलूब करें आज के दौर में, अपने बेटों को बेटों को और बेटियों और बेटियों दोनों को इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रों में रखिए कि कोई ऐसी गंदगी उनकी ज़िंदगी में ना जाए। अल्लाह ताला आपको मुझे इस बुरी चीज़ से बचाए। फिर इसके बाद एक और कौम एका वाले, और एका वाले जालिम थे तो देख लो कि हमने इनसे भी इंतकाम लिया। और इन दोनों कौमों के उजड़े हुए इलाके खुले रास्ते पर हैं, यानी बिल्कुल मेन रोड्स के ऊपर ये बस्तियां थी। हिजर के लोगों ने भी रसूलों की तकसीब की, हमने अपनी आयात इनके पास भेजी, अपनी निशानियां इनको दिखाई, मगर वो सबको नजरअंदाज ही करते रहे। ये है जुर्म कौमों का कि अल्लाह की भेजी हुई आयतों को नजरअंदाज कर दें। वो पहाड़ तराश तराश कर मकान बनाते थे और अपनी जगह बिल्कुल बेखौफ और मुतमईन थे। जरा से सोचिए इस पे। आखिरकार एक जबरदस्त धमाके ने उनको सुबह होते आ लिया और इनकी कमाई इनके कुछ काम ना आई। बड़ी बड़ी तरक्कियां सब जाया हो जाती हैं। अल्लाह सुबहाना ताला कैसे बस्तियों को मिटाकर दिखाता है कि मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अपने अजाबों से बचाए और पकड़ाए। इसके बाद अब कायनात का मकसद हयात क्या है, अल्लाह सुबहान ताला फरमाते हैं, अपने आप को फोकस्ड रखो। किस तरह से रखो, वमा खलकना समावाती वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक, हमने जमीन आसमान और इसमें मौजूद सब चीजों को हक के सिवा किसी और बुनियाद पर खल्क नहीं किया। और फैसले की घड़ी यकीनन आने वाली है, पस ए नबी तुम इन लोगों की बेहूदगियों पर शरीफाना दरगुजर से काम लो, यकीनन तुम्हारा रब सबका खालिक है और वो सब कुछ जानता है। यहाँ आप देखिए बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, फसफखिस सफल जमील किल विद काइंडनेस। जिंदगी में बुराई तो रहेगी, गलत काम करने वाले रहेंगे, उस बुराई को मिटाने का तरीका क्या है कि आप दरगुजर कीजिए। अच्छा आप देखिए, इंग्लिश में कहते हैं To lose an argument is better than losing a person. बहस में हार जाना बेहतर है किसी इंसान से हारने से। जिंदगी में बहुत वक्त ऐसे आते हैं जब आप खास तौर पे नेकी पे आते हैं। अब इस बारे में आपको थोड़ी सी तबलीग की हिकमतें भी मिलेंगी, जिसमें एक ये भी है कि बस जब हम तबलीग के दौरान बदतमीज हो जाते हैं, दूसरों का मजाक करते हैं, ताने देने लगते हैं, खुरदरे लफ्ज बोलते हैं, चिड़चिड़ाने वाली बातें करते हैं, हाथ लहरा लहरा के लोगों को शर्मिंदा करते हैं, अल्लाह ताला ने इससे मना किया। हमारे प्यारे नबी की बात कभी ऐसे नहीं होती थी, आप लोगों के दिलों में उतरने वाली बात करते थे, कौलन बलीगा कलस पीछे आप पढ़ के आए हैं। तो लिहाजा नेकियां करते हुए गीबत में ना पहुंच जाएं और जो नए लोग हैं उनके साथ अच्छा मामला रखें। इसीलिए आप देखिए अगली आयतों में कुछ और अदब सिखाए जा रहे हैं, इन्ना रब्बका हुवल खल्लाकुल अलीम, यकीनन तुम्हारा रब सबका खालिक है और सब कुछ जानता है। हमने आपको सात ऐसी आयतें दे रखी हैं जो बार बार दोहराई जाने के लायक हैं। सूरत फातिहा का दूसरा नाम है, एक तो बार बार कुरान में पढ़ी जाती है और इसको सात दफा पढ़ के बीमारों पे फूंकना शिफा का जरिया भी है, अल्लाह के नबी से ये चीज साबित है। और तुम्हें कुरान अजीम अता किया गया, तुम इस मताए दुनिया की तरफ आंख उठाकर भी ना देखो जो हमने इनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी है, और ना इनके हाल पर अपना दिल कुढ़ाओ, इन्हें छोड़कर ईमान लाने वालों की तरफ झुक जाओ और ना मानने वालों से कह दो मैं तो साफ साफ तंबीह करने वाला हूं। ये इसी तरह की तंबीह है जैसी हमने उन तफरका परदाजों की तरफ भेजी थी जिन्होंने अपने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर डाला। افتؤمنون بباد الکتاب وتکفرون بباد. آسان حکموں کو لے لیا، مشکل حکموں کو چھوڑ دیا اور فرقوں میں بٹ گئے. تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. پس سے نبی، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو، یعنی کسی سے ڈرنے جھجکنے کی ضرورت نہیں، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو. رہ گئے لوگ تو انا کفینا کل مستحزین، تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا. ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. نوٹ کریں، نبی پر لوگ باتیں بناتے تھے، اگر آپ پہ بن گئی تو کیا بڑی بات ہے؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک صاف ہے؟ اس کا علاج یہ ہے، اب جب لوگ باتیں کرے، دین پہ عمل کی وجہ سے بدنامی ہو، باتیں ہوں، لوگ آپ کو ملا کے، آپ کے پردے کا مذاق، آپ کے حجاب کا مذاق، آپ کی داڑھی کا مذاق، آپ کی ٹخنوں سے اونچی شلوار کا مذاق، تو علاج کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. دیکھیے سورت کتنے خوبصورت پیغام سے پوری ہوئی، اور یہ سورت نہیں اگلی سورت بھی، سورت نحل اور سورہ حجر ایک ہی پارے میں ہے اور دو سورتوں پہ مشتمل پارہ. دونوں کے اینڈ میں تبلیغ کی حکمتیں ہیں، وہاں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، یہاں بھی سمجھیے گا. جو نیا نیا شخص دین کی طرف آتا ہے نا، وہ بڑا ڈرا ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، اجنبیت ہوتی ہے، کبھی وہ کیا ہی نہیں، کبھی وہ چکھا ہی نہیں، اتنے لوگوں کو اس حال حلیے میں دیکھا ہی نہیں. جب کوئی نیا ایسا شخص کسی دین کی محفل میں آئے، اس کی ہمت بندھائیں، قدم قدم آنے دیجئے، رفتہ رفتہ. آپ دیکھیے کسی کو ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنا ہے تو ایک دم تو نہیں چڑھے گا، ہمت بندھائے، کر سکتے ہو، دل جوئی کریں. بڑی چوٹیں کھا کے آتے ہیں لوگ آپ کی قرآن کی محفلوں میں، اور اگر یہاں آتے ہی آپ نے ان کے حال حلیے پہ تنقید، ان کے بیٹھنے پہ تنقید، ان کے سیل فون پہ تنقید، ان کے لمبے ناخنوں پہ تنقید، اور ایک خاص ایسا گیٹ اپ بنا دیا کہ وہ اپنے آپ کو ویسے مس فٹ فیل کرے، تو یاد رکھیے وہ نہیں آئے گا. ابھی تو بیچارے نئے نئے آئے ہیں، آپ کا بچہ چلنا شروع کرے، کیا آپ اس سے بھاگنے کی توقع رکھتے؟ تو دین کا سفر آہستہ آہستہ ہے. اور یہ جب شروع میں بھی ہم نے بات کی کہ یہ ماحول کی خوبصورتیاں اور ہر چیز، ایون کھانا پینا، دعوتیں کرنا، یہ سب سیڑھیاں ہوتی ہیں نئے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی. امیجن کیجئے نا، کوئی کسی جگہ آئے، اندر سب بیٹھے ہیں بلکہ نقاب میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ سوچئے، میں نے خود اس چیز کو کئی دفعہ فیل کیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی عورتوں کی محفل میں خواتین بیٹھی، دور ایک سسٹر مجھے دکھتی ہیں، وہ نقاب میں بیٹھی ہوتی ہیں، میں خود پریشان ہو جاتی ہوں، میں ادھر دیکھتی ہوں، کبھی ادھر دیکھتی ہوں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی مرد تو نہیں، کوئی کیمرے تو نہیں لگے ہوئے، بھائی کیا وجہ ہوئی، آپ یہاں کیوں نقاب میں ہیں؟ ایک آدھ ایسا ہوا، میں نے بعد میں ایک عورت سے، سسٹر سے پوچھا، کسی اور ملک کی بات ہے، کہتی میں آئی تھی، پھر تر شروع ہوا تھا، میں بیٹھی، پھر مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نقاب میں ہوں. صحیح بات ہے، عادت ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو اس میں جو ادب سکھایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ عام ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ لوگ آ سکیں. جتنی خوبصورتی آپ کو شادیوں میں چاہیے کہ آپ اتنی دین کے لیے نہیں لا سکتے. میں نہیں کہتی آپ ڈسپلے پہ چلے جائیں، میں نہیں آپ کو کہتی آپ تیار ہو کے میک اپ کر کے لوگوں کو سجائیں اور پھر دین کی دعوت دیں، یہ نہیں ہے. لیکن صاف ستھرے ڈیسنٹ طریقے سے لوگوں کو بلائیں، ایک دن آئے گا وہ کہیں گا اچھی. کئی لوگوں سے میں نے یہ بات سنی ہے، کہتے دین کے بارے میں بڑا خوفناک تصور تھا، فلاں کو ملے ہمیں تو ایسا لگا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ کو دیکھتے ہیں ملتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم بھی نیک ہو سکتے ہیں. ہاں بھائی، کیوں ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا پیش کریں کہ ان اچیویبل ٹارگیٹ ہے اور ہم تو پہنچے میں، بس ہمارا پلو پکڑو اور جنت میں پہنچ جاؤ. پھر دوسری بات ہے کہ وقف اس جناحک، اپنے کندھوں کو جھکاؤ. یاد رکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنجیدہ ہو چکے ہوتے ہیں دین کی طرف، ان کے ساتھ آپ کو نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پیش آنا ہے. بٹ ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو منہ ہی نہیں کرتے، جن کو پرواہ نہیں، اللہ کہتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں. بس ساری بات کا جو ادھر مینر مل رہا ہے نا، وہ کہہ کے نئے سفر والوں کی مدد کرو. پتہ نہیں کتنے انہوں نے گھر جا کے تانے سننے ہیں، کئی سسٹرز ہیں، میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں، یہاں کی تو میری ابھی جمعہ 8 دن کی ملاقات ہے، کئی ملکوں میں ایسی ایسی سسٹرز ہیں، وہ کہتی ہیں جب ہم قرآن سن کے آتے تھے نا، تو ہم اپنا سکارف چھوٹا سا اپنے بیگ میں چھپا کے لاتے تھے، اور گھر میں جانے سے پہلے، باہر کی بات نہیں ہے یہ، گھر میں، کہ سکارف میں اپنے شوہر کے سامنے نہیں میں نکل سکتی، पता होता था वहां जा रही हूँ वहां जा रही हूँ, उधर से मैंने कुरान क्लास में आना है, तो स्कार्फ छुपा के लाती थी, पहले बाहर आपके क्लासरूम के खड़े होकर स्कार्फ पहनती थी, फिर आती और घर गाड़ी में बैठने से पहले उतारती थी क्योंकि साथ में आए हुए लेने के लिए। ऐसे भी लोग हैं, मत सोचिए सबको आलिम फाजिल हाफिज कारी मिले हैं, हमेशा लोगों को गुंजाइश दें, लोगों से प्यार करें, पुराने लोगों के साथ सख्ती करें, नए लोगों के साथ नरमी करें, क्योंकि अभी तो वो बेचारे बच्चे हैं, अभी उन्होंने ये चीज चखी नहीं है। तो याद रखिए कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद फर्स्ट स्टेप। जिंदगी में अगर आपने इस दीन को ग्रास रूट तक पहुंचाना है तो दीन के लेवल को खूबसूरत करें और अपना लेवल जरा नीचा करें। आप अकेले में जो मर्जी नेक बने, नफिल पढ़े लंबे चौड़े, तहज्जुद पढ़े लंबी, लोगों में मुख्तसर नमाज पढ़े। आपको एयरपोर्ट्स पे जाना है, आप मासियों के उलिये में जाएं, कोई नहीं आपको देख रहा, किसी को नहीं पता आप मुबल्लिग हैं। आप कहीं बाहर बाजारों में जाती हैं, आपको देखकर लोगों को लगे ये गरीब मस्कीन औरत है, बुरका भी फटा हुआ, चादर भी फटी हुई है। बट जब आप दीन के नाम पे बाहर निकले, दीन की इज्जत का जरिया बने। मुझे कभी समझ नहीं आती कि जब लोग बाहर की दुनिया में तो यूं चमकते दमकते दिखते हैं कि जिनको आप जानते भी नहीं, आप बाजार जा रहे हैं, आपको लिपस्टिक की क्या जरूरत है, आपको लवाए के ऊपर मोती सितारे लगाकर दूसरों को दिखाने की क्या जरूरत है। वजह क्या कि वहां आपकी अपनी अना होती है। तो सारी बातों का खुलासा जिस पे ये सूरत पूरी होती है, और वो क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमतों से ये दीन फैलाया था। अफसोस के साथ कहूंगी, कुछ मुखलिस बड़े खूबसूरत दीनदार, लेकिन ओवरडोज कर दिया, इखलास के साथ काम किया लेकिन लोगों को मुश्किलों में डाल दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे लिए इस सफर को अच्छे तरीके से लाए। दीन नहीं बदलना, पैगाम नहीं चेंज करना, लेकिन जहां तक आप अपने अंदर नरमी लाकर रुख्सतों को कबूल करते हुए दीन को पेश करते हैं, उतने ज्यादा लोगों तक ये दीन का पैगाम पहुंचेगा। और याद रखिए, खुद साख्ता दीन का मेयार अल्लाह को भी पसंद नहीं है।